ओम शांति। तो परिवर्तन का पाठ पक्का है ना सभी को? आप देख रहे हैं मानसून का रूप, जिस कारण से जो स्पीकर फिक्स था उसने आने से मनाही कर दी। तो हमारे पास मधुबन में भी स्पीकर्स अवेलेबल है, हमने रिक्वेस्ट की। तो आज हमारे बीच में आदरणीय राजयोगी भ्राता छोटेलाल भाई जी हैं। हम एक हाथ से भ्राता जी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। यूं तो आपका लौकिक जन्म राजस्थान की धरनी पर अलवर जिले के अंतर्गत एक गांव दारोदा से हुआ है, लेकिन अलौकिक जन्म हरियाणा में हुआ है और समर्पित भी हरियाणा से हुए हैं। वर्तमान में 44 वर्षों से आप समर्पित जीवन जी रहे हैं और 39 मतलब कि 39 ईयर से मधुबन में रह रहे हैं। और आपके लौकिक घर में भी गीता पाठशालाएं चलती है, परिवार के कई सदस्य बाबा के बच्चे हैं, ज्ञान मार्ग पर चलते हैं और कुछ बहनें बाबा के यज्ञ में समर्पित भी है। मधुबन में विशेष करके जो आंगन की सिक्योरिटी है वो आपकी मुख्य सेवा है। इसके अतिरिक्त जो साल भर मधुबन में रात्रि क्लास होती है उसके लिए भी स्पीकर फिक्स करना ये आपकी ही जिम्मेवारी है। और मुरलियों का, योग का बहुत अच्छा अभ्यास चलता रहता है, तो समय समय पर भर्तियां कराने पूरे भारत भर, तो क्या नेपाल मॉरिशस आदि भी आप जाकर आए हैं, तो भर्तियां कराते ही रहते हैं। और आज हमारे बीच में है एक सुंदर विषय के साथ, तीव्र पुरुषार्थ हम कैसे करें। तो सुनते हैं भ्राता जी से, आदरणीय भ्राता जी।
ओम शांति। हम सभी देख रहे हैं कि समय तीव्र गति से परिवर्तन भी हो रहा है, उसका भी सिग्नल वर्तमान में हम सब देख रहे हैं और दूसरा तीव्र गति से जा भी रहा है। तो यदि हमें समय पर संपूर्णता की मंजिल को पाना है तो जरूरी है कि अपने पुरुषार्थ की गति को भी तीव्र बनाकर रखना, तभी हम समय पर मंजिल पर पहुंच सकेंगे, अन्यथा समय की दौड़ में पीछे रह सकते हैं। तो इस संबंध में अव्यक्त बाप दादा ने मुरलियों में जो कुछ इशारे दिए हैं वो आप सभी के सामने अनुभव के आधार से रखेंगे। तो एक तरफ हम तीव्र पुरुषार्थ का लक्ष्य रख के आगे बढ़ रहे हैं, तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कईयों के सामने अनेक जन्मों के पाप कर्म विकर्मों का हिसाब किताब भी आड़े आता है और वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में विघ्न बनकर हमारे पुरुषार्थ में रुकावट बन जाता है। तो उन यदि कारणों का हम निवारण कर दें तो निश्चित रूप से हमारा पुरुषार्थ तीव्र गति का होगा। जैसे कि कोई मटके में पानी भर रहा हो और नीचे से उसमें छेद हो तो मटका भर नहीं पाएगा, क्योंकि साथ साथ लीकेज हो रही है। तो ऐसे ही कईयों के जीवन में ऐसा हो रहा है, तो उन कारणों का हम निवारण करना बहुत ही जरूरी होगा। तो कारण तो बहुत हैं, लेकिन उनमें से भी बाबा ने मुख्य तीन कारण बताए। यदि वो तीन कारणों का हम निवारण करके चलें तो निश्चित रूप से हमारा पुरुषार्थ तीव्र गति का होगा। पहला कारण बताया बाबा ने, मैं और मेरापन। मैंने किया, मेरे अंदर गुण विशेषता, मैं ऐसा कर सकता हूं, मुझे आगे रखा है। यदि कुछ करने के बाद मैंपन का अभिमान आता है, अपनी गुण विशेषता प्राप्तियों का, महानताओं का, तो वो भी नीचे गिराने का, अपमान का, भगवान के दिल से दूर ले जाने का कारण बन जाता है। बाबा भी वहां अलग हो जाता है, और जहां पर भगवान अलग हो गया तो सारा कार्य तो उसी का ही, वही करा रहा है, तो वहां अकेला व्यक्ति अपने आप को दिलस्कष्ट, निराश, उदास, हताश अनुभव करता है और विघ्न बन जाता है, रुकावट पुरुषार्थ में। तो मैं शब्द जहां भी आए तो अपना श्रेष्ठ स्वमान ही याद आए, और दूसरा मेरापन, मेरा मकान, दुकान, बच्चे, बिजनेस, धंधा धोरी, जिनसे भी। और आज की सबसे प्रिय चीज मेरी क्या है? मोबाइल है। कुछ भी हो गया, मेरा मोबाइल ठीक नहीं है, आज कैसे होगा, क्या होगा, बार बार बुद्धि होगी सर में। कईयों ने तो जैसे कि जीवन का आधार ही बना लिया मोबाइल, उसके बिना काम नहीं चल सकता। देखो, जब मोबाइल नहीं था तभी भी तो दुनिया चल रही थी ना, और आगे जब नहीं होगा तो भी चलती रहेगी, उसके बिना काम बंद होने वाला, रुकने वाला नहीं है। इसलिए साधन है तो हम उसे यूज करें, जरूर फायदा उठाएं, लेकिन उसको आधार ना बनाएं। आधार एक बाबा ही रहे बस, जितना जरूरत हो उतना ही यूज करें, बाकी समय अपने से भी दूर रखें, मैं तो ये कहूंगा है। तो इस तरह से मेरा शब्द जहां भी आए तो मेरा प्यारा बाबा याद आए। देखो, माताएं फील नहीं करना, माताओं का किससे ज्यादा मेरापन होता है? बच्चों से है। एक प्रैक्टिकल का अनुभव बतला रहा हूं, एक माता है, कैसे मेरापन दुख का कारण बनता है। एक माता का 22 साल का लड़का था, उसने एक्सीडेंट में शरीर छोड़ दिया। माता ज्ञान में चलती थी, बच्चा भी ज्ञान में था, हिसाब किताब आता है तो कोई रोक नहीं सकता। और अभी हम कहां, पूना गए थे, हाँ, तो वहां क्लास के बाद वो भाई ने माता से मिलाया मेरे को। माता बहुत परेशान थी, चेहरा उदास निराश था। क्या हुआ जी? बोले एक ही लड़का था, एक्सीडेंट में चला गया। तो मैंने कहा, माता जी आप कितना समय से ज्ञान में? बोले 20 साल से। 20 साल से माता जी ज्ञान में, सब कुछ कर रहे हैं, चल रहे नियम धारणों में, लेकिन फिर भी निराश उदास। तो मैंने कहा, देखो ये तो हमको बाबा ने ज्ञान दिया, जिस आत्मा का पाठ पूरा हो गया तो उसको जाना ही है, आप हो, हम हो, कोई हो, सबको जाना है। लेकिन आपका दुख का कारण बन रहा है ज्यादा कि मेरा लड़का था, उसकी जगह आप उसको बाबा का समझ कर चलेंगे तो वहां परेशान नहीं होते। तो मुझे तुरंत ही ये सुनाते सुनाते तुरंत बाबा से टचिंग मिली, एक अनुभव याद आ गया। तो आप ध्यान से सुनना, खास माताएं या जिनसे भी मेरापन होता है, जिसका भी है। एक युगल थे, उनको बहुत पुरुषार्थ किया उन्होंने, लेकिन दुनियावी रीति से, लेकिन उनको बच्चा नहीं था। 20 साल के बाद उनको एक लड़का पैदा हुआ, तो बहुत खुशी हुई। आप सोचो 20 साल के बाद कोई बच्चा हो तो है, दुनिया में कितनी खुशी होती है। और उस बच्चे ने 20 दिन के बाद शरीर छोड़ दिया, तो कितनी माता दुखी परेशान होगी, अनुभव है ना माताओं का। माता जी बहुत दुखी परेशान, रोए दिन रात, बस कैसे भी करके मेरे लड़के को मेरे से मिलना है, एक बार इसके मुख से मैं मां सुनना चाहती हूं बस। बोल, समझाया लोगों ने, ऐसे नहीं होता है, नहीं तो माने ही नहीं, दिन रात रोए पीटे। तो किसी ने कहा, फलाना महात्मा बहुत ऊंचा पहुंचा हुआ है, उसके पास जाओ, वो कुछ कर सकता है। तो उसके पास गए, उसको बताया, उसने भी यही समझाया, माता जी ऐसे नहीं होता है, जो चला गया वो चला गया है, नहीं कैसे भी करके इसके मुख से मैं मां शब्द सुनना चाहती हूं, 5 मिनट के लिए भी इसको जिंदा कर दो। चलो ठीक है भाई, सन्यासी ने अपनी रिद्धि सिद्धि के बल से उसको 5 मिनट के लिए कैसे भी करके तपस्या के बल से जिंदा किया। तो जैसे ही जिंदा हुआ तो माता जी बड़ी खुश, बेटा आप क्यों मेरे को छोड़ के चले गए, एक बार मां शब्द मैं सुनना चाहती हूं आपके मुख से। वैसे 20 साल का, 20 दिन का बच्चा बोलता नहीं है, लेकिन उसने, चलो एक उसका जवाब मिलना था, इसलिए उसने बोला, कौन सी माँ, किसकी माँ, किसका बच्चा, मेरी कोई माँ वाँ नहीं है, मैं तो अपना हिसाब किताब चुक तू करने के लिए आया था, पूरा हो गया चला गया। ये सुनकर माता जी की आंख खुल गई, कोई किसी का नहीं है, यहां पर है तो एक बाबा हमारा है, बाकी कोई किसी का नहीं, ये सब हिसाब किताब चुक तू करने के साथ ही बने हैं, जिस हिसाब किताब पूरा हुआ चला गया। ऐसे ही इसके एक
पॉजिटिव रूप में, दूसरी तरफ एक अनुभव, एक माता को बच्चा नहीं था, वो ज्ञान में चलती थी। तो शुरू शुरू में थोड़ा सा संकल्प चला, लेकिन जब मुरली सुनी, धारणाओं में चलती गई, बाबा की मुरली सुनते सुनते उसने अपना बाबा को बच्चा बना लिया। हर बात में भोग लगाती, भोजन खिलाती, कुछ भी करती, बाबा बेटा आ जाओ, बाबा बेटा आ जाओ, हर बात में बाबा को बुला के पहले आगे रखती और वो अनुभव करती जैसे कि कोई व्यक्ति किसी का साथी बनकर साथ देता, हर समय बाबा बेटा बनकर उसको साथी बन के साथ दे रहा। तो और क्या चाहिए फिर, सर्वशक्तिवान भगवान हमारा साथी बन के साथ निभा रहा हो तो वहां सब कुछ सहज और सरल संभव होता चला जाता। इसलिए मैं शब्द जहां भी आए अपना श्रेष्ठ समान याद आए, और मेरा शब्द जहां भी आए मेरा प्यारा बाबा ही याद आए, तो पुरुषार्थ तीव्र गति का बना रहेगा। और तीव्र पुरुषार्थ के में जो रुकावट का कारण बनती है बात, दूसरी बात, हद की इच्छाएं, हद की इच्छाएं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, अधिक धन कमा लें तो बाबा की अच्छी सेवा करेंगे, मेरी तबीयत ठीक हो जाए तो मेरा पुरुषार्थ अच्छा हो, फलाना काम पूरा हो जाए तो मैं पुरुषार्थ अच्छा करूंगी या करूंगा, हो गया तो खुश, नहीं हुए तो परेशान। हम जो कुछ चाहें वैसा ही तो सब कुछ नहीं हो जाता है, कई बार हो भी जाता है, कई बार नहीं भी होता है। तो बाबा ने कहा इच्छाएं कभी अच्छा नहीं बनने देंगी, एक पूरी होती है दूसरी पैदा हो जाती। इसलिए बाबा ने कहा अच्छा बनने की इच्छा रखो, निरंतर योगी फरिश्ता बनने की इच्छा रखो, तो बाबा हमारी सब इच्छाएं स्वतः ही पूरी कर देगा। तीसरा कारण जो बाबा ने बताया, एक दूसरे को देखना और हद की प्राप्तियों में एक दूसरे की कॉपी करना। वो भाई जी ऐसे करते हैं, वो माता जी ऐसे करते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये क्या हो गया, एक दूसरे को देखना। अभी कौन संपूर्ण बनना है, उनके अंदर भी तो ये कमी कमजोरी है, जो खुद चल रहे वो भी ठंडे हो गए दूसरे को देख। जिनको पुरुषार्थ में आगे जाना है वो कभी एक दूसरे को ना देखे, अपने आप और बाबा को ही देख कर चले तो निश्चित रूप से पुरुषार्थ तीव्र गति का होगा। देखो ये तो राजधानी स्थापन हो रही है तो सबका पुरुषार्थ तो एक जैसा वैसे भी नहीं होना है, नंबर वारी होना है। हम किस लिए बाबा के ज्ञान में आए, कौन क्या कर रहा है ये देखने के लिए तो नहीं आए थे, अपने आप को देख के, बाबा को देख कर बाप समान निरंतर योगी बनने के लिए बाबा के बने थे ना। तो जिस लक्ष्य को लेकर भगवान के बने उस लक्ष्य को निरंतर सामने रखें, बाकी सबसे अपने आप को मुक्त करते जाएं। दूसरा, हद की प्राप्तियों में एक दूसरे की कापी करना। उनके पास ये साधन है सुविधाएं, मेरे पास भी होने चाहिए, मिल गए तो खुश, नहीं मिले तो परेशान। तो हम जो कुछ चाहें वो सब कुछ ही तो हमें नहीं मिल जाएगा, कई बार मिल जाता है कई बार नहीं मिलता है। देखो कभी भी साधन सुविधाओं में तुलना नहीं करनी है, तुलना करनी है तो अच्छाइयों में कीजिए, महानताओं में कीजिए, गुण विशेषताओं में कीजिए, पुरुषार्थ में कीजिए। उनका पुरुषार्थ इतना अच्छा है, मेरे को भी ऐसा बनना है, उनके अंदर एक गुण विशेषता मुझे भी अपने अंदर लाना है, तो आपका पुरुषार्थ तीव्र गति का होगा। अब कैसे, हर एक चेक करना कि हमने अपने आप को पूरी तरह से मैं मेरे पन से मुक्त किया है या अभी भी रहा हुआ है। सब मुक्त हो गए, मैं मेरे पन से या रहा हुआ है, चेक कर लो हर एक अपने आप। मैं पूछता नहीं हूं, आप खुद ही चेक कर लेना, और अब बाबा ने जो संदेश दिया उसके आधार से और चेक कर लेना। अव्यक्त बाप दादा ने एक संदेश में ये बात बताई कि बाबा बच्चों का चार्ट देख रहे थे, तो चार्ट में बाबा ने क्या देखा कि बच्चे मोटे रूप के में मेरेपन से तो मुक्त हुए हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप का अभी भी रहा हुआ है। तो उसका पता कैसे चलेगा, उसकी चेकिंग के लिए बाबा ने तीन बातों का यंत्र दिया। अब आप सभी सुनते भी जाना, हर एक अपने आप को चेक कर लेना, तो आपको पता चल जाएगा अभी तक हमारे अंदर मैं मेरापन है या मुक्त हो चुके हैं। तो बाबा ने कहा कि देह भान से न्यारे होकर, तो सभी देह भान से न्यारे हो जाओ, आत्मअभिमानी बन जाओ। देह भान से न्यारे होकर, दूसरा बाबा ने कहा साक्षी दृष्टा बनकर। एक खेल नाटक चल रहा है, उसमें हम सभी आत्माएं अपना अपना शरीर धारण कर पाठ बजा रहे हैं।
तो अपने पार्ट को भी दूसरों के पार्ट को भी साक्षी होकर देखना, सब कुछ देखते सुनते कर्म करते उसके प्रभाव से मुक्त रहना, यही है साक्षीपन की स्थिति। तो वो भी चेक कर ले हरेक। तीसरी बात, देवान से न्यारे होकर साक्षी दृष्टा बनकर संपूर्ण नॉलेज की स्टेज के आधार से चेक करो। संपूर्ण नॉलेज की स्टेज के आधार से चेक करो। अब चेक क्या करना है कि यदि अचानक ऑर्डर मिले छोड़ो तो सब कुछ छूट जाए। बाबा ने कहा इसमें एवर रेडी है, हर एक अपने आप से पूछ ले। एग्जाम्पल के तौर पर आज नहीं तो कल होना तो है, ऐसे भी अभी मान लो यहां बैठे बैठे बाबा की तरफ से इशारा मिले कि बच्चे सब कुछ छोड़ के एक सेकंड मोड़ के बाबा के पास पहुंच जाओ, तो क्या हम एक सेकंड मोड़ के बाबा के पास पहुंच सकते हैं? अगर पहुंच सकते हैं तो समझो कि मैं मेरेपन से मुक्त हुए, और यदि नहीं तो उस समय बुद्धि किस में जाएगी? जिसमें भी मेरापन होगा। बच्चों का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा? बुद्धि उधर गई तो फेल, क्योंकि पेपर तो एक सेकंड का ही होना है। तो इस तरह से हर एक अपने आप को चेक कर ले कि मैंने अपने आप को कितना मैं मेरेपन से मुक्त किया है। जितना जितना मुक्त होते जाएंगे पुरुषार्थ तीव्र गति का होता है, और तीव्र पुरुषार्थ के लिए ये तो कारणों का निवारण करके चलें, और इन तीन अभ्यास को हम रोजाना की दिनचर्या में अभी से ही करके चलें। जिनको पुरुषार्थ को तीव्र बनाना है, पवित्रता में संपूर्ण बनना है, सहज निरंतर योगी बनना है, मन बुद्धि की एकाग्रता को बढ़ाना है, ये तीनों अभ्यास आप क्लास सुनते सुनते भी ये कर सकते हैं रोजाना सारे दिन की दिनचर्या। पहला अभ्यास, आज मुझे सारे दिन में कम से कम 50 लोगों को आत्मा के रूप से देखना है, जो भी सामने आए, ये भी आत्मा वो भी आत्मा वो भी आत्मा, कम से कम 50, ज्यादा आप जितनों को भी देख सकते हो। क्या होगा इससे कि हमारी आंखें जो कुछ देख रही हैं मन तुरंत वैसा ही संकल्प करना शुरू कर देता है और वैसी हमारी स्थिति बन जाती है। तो जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति बनी, वैसे विचार बने, और जैसी वृत्ति वैसी स्थिति बन जाएगी। तो मूल आधार क्या हुआ, दृष्टि। यदि हम दृष्टि को आत्मिक बना लें, रूहानी बना लें, दिव्य बना लें, तो फिर संपूर्ण बनने में देरी नहीं लगेगी। दूसरा अभ्यास, देखो दृष्टि में कितनी बड़ी पावर है, एक अनुभव याद आ गया मुझे। आप झोपड़ी के नजदीक बैठे ना, तो झोपड़ी का एक अनुभव, साकार बाबा के समय की बात है। यहां अभी झोपड़ी जैसे वैसे नहीं थी, खजूर के पत्तों की होती थी तो, और घास फूस भी बहुत होता था, इतना लोगों का आना जाना भी नहीं होता, तो सम बरसात के दिनों में घास बढ़ जाता था। तो एक बार की बात है, एक बलदेव भाई थे, आपने शायद पुराने जो उनको जानते होंगे या नहीं, जयपुर में रहते थे साकार बाबा के समय, वो भाई यहां आए हुए थे। इस अनुभव के पीछे कई बातों का राज छुपा हुआ है कि बाबा जब भी जो हमें आज्ञा देते हैं यदि हम वैसा करके चलते हैं तो उसमें बहुत बड़ा कल्याण है, और उस आधार से बाबा हमारे संस्कारों को परिवर्तन कराना चाहता है, आगे आने वाले समय में उस आधार से हम समस्याओं में विजयी बन सके, इसके लिए भी अनुभव काम आएगा, और जब भी बाबा जो कहे यदि वैसा करके चलते तो उसमें बहुत बड़ा कल्याण। तो भाई को बहुत डर लगता था, बलदेव भाई को, और विशेषकर सांप से बहुत डर लगता था। तो बरसात के दिनों में वो आए और वो झोंपड़ी की तरफ आए तो उन्होंने देखा बहुत बड़ा सांप, 5-6 फुट का काला सांप वहां घूम रहा है। तो उसको बड़ा डर लगा और दौड़ के बाबा के पास गया, बाबा आपकी झोंपड़ी के पास बहुत बड़ा काला सांप है। तो बाबा ने कहा ठीक है आप चलो, बाबा आते हैं। बाबा आए और बाबा ने वहां खड़े होकर पास में उसको पावरफुल दृष्टि दी। भगवान जिसके अंदर था तो ऑलमाइटी पावर बैठा है उसके अंदर, तो जैसे ही उस सांप को दृष्टि दी और सांप से ऐसे सुकुड़ सुकुड़ कर गोल होकर और इकट्ठा होकर बैठ गया। फिर बलदेव भाई को बाबा ने बोला बच्चे जाओ एक टोकरी और बोरी लेकर आओ, टाट बोरी होती है ना जो,
फूल और रस्सी भी लेके आओ। वो सब लेके आया। फिर बाबा ने कहा, बच्चे अभी इस बोरी को इसके ऊपर डाल दो, सांप के ऊपर। उसने बोरी डाल दी। फिर बाबा कहता उसको, बच्चे अभी इसको हाथ से उठा के टोकरी में डालो। वो तो बिल्कुल डर गया, उसके पैरों से जमीन खिसक गई। उसको तो पहले ही डर लगता था सांप से, और बाबा ने कहा पकड़ के इसको टोकरी में डालना है, तो वो तो बड़ा डर गया। उसने कुछ नहीं किया। 2 मिनट के बाद फिर बाबा ने कहा, बच्चे कौन कह रहा है? तो उसके अंदर जागृति आई, ये तो ऑलमाइटी बाबा कह रहा है। तो वैसे डरते डरते उसने उसको हाथ से उठा के टोकरी में डाला कि भगवान कह रहा है, शिव बाबा के आर्डर है। टोकरी में डाला और फिर बाबा ने कहा, बच्चे अभी इस बोरी को इसके ऊपर चारों तरफ ढक के और रस्सी से इसको बांध दो टोकरी को। बोरी ऊपर डाल के और रस्सी चारों तरफ बांध दिया। फिर एक भाई को और बुलाया बाबा ने। फिर बाबा ने कहा बलदेव भाई को, बच्चे अभी इसको सिर पर रख के टोकरी को और जंगल में जाकर छोड़ के आओ। तो वो डर गया। वो तो चलो, यहां तो बाबा था, कुछ होता तो बाबा बचा लेगा, लेकिन सिर पर रख के और जंगल में जाके छोड़ के आना इसको, तो ये तो बड़ी और मुसीबत आ गई है। फिर भी उसने कुछ नहीं किया। फिर 2 मिनट के बाद बाबा ने कहा, बच्चे किसकी आज्ञा है, कौन कह रहा है? तब फिर जागृति आई उसके अंदर, और तो एक भाई भी और उसके साथ गए, टोकरी को सिर पर रख के जंगल में छोड़ के आया। अब क्यों भगवान ने उससे कार्य करवाया, इसके पीछे बड़ा राज है। तो कुछ दिनों के बाद आपने सुना होगा, हापुड़ में एक बहुत बड़ा साकार बाबा के समय हापुड़ में बहुत हंगामा हो रहा था। वहां आर्य समाजी ब्रह्मा कुमारियों का बहुत विरोध कर रहे थे कि इनको यहां से भगा के छोड़ेंगे, इनके सेंटर को नहीं खुलने देंगे, यहां चलने देंगे। रोजाना कुछ न कुछ समस्या विघ्न पैदा करते रहते थे। तो बाबा के पास रोजाना का समाचार बहनें भेजती रहती थी। तो बाबा ने कहा, बच्चे वहां बहनों को वहां के लोग कुछ तंग कर रहे हैं, समस्या है, तो आप वहां जाओ हापुड़ में और उनको जो जरूरत हो तो बहनों की जाके मदद करो। तो बलदेव भाई यहां से गए, तो उनको पता चल गया था कैसे कि इनका बाबा ने कोई माउंट आबू से किसी भाई को भेज रहे हैं यहां। तो उन्होंने क्या किया, जो सांप जैसा ही एक दूसरा जिसके दोनों तरफ से चलता है ना, क्या कहते हैं उसको, दुमही या कुछ कहते हैं ऐसा, हाँ, तो उसको पकड़ कर रखा था। और उन्होंने सोचा कि जब इनका भाई जो आ रहा है ना माउंट आबू से, वो आएगा तो उसके गले में इसको डाल देंगे और डर के मारे भाग जाएगा। अब भगवान तो त्रिकालदर्शी, वो जानता था, तो उसका डर पहले से ही बाबा ने निकाल दिया था। तो जैसे ही वो आकर वहां पहुंचा, हापुड़ में पहुंचा, तो उसके गले में वो डाल दिया। अब उसका तो डर पहले से ही निकल गया, तो उसने पकड़कर वो उनके ऊपर फेंक दिया। तो सारे डर के मारे भाग गए। तो देखो कैसे भगवान अपने बच्चों की कमी कमजोरियों को खत्म करता है, डर को भय को निकालता है, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी है। उसको पता है कि इनके द्वारा कैसे क्या क्या कराना है। तो उनके एक तो पुराने स्वभाव भय के डर के संस्कारों को खत्म करना, और दूसरा समय पर उनकी जो गुण विशेषताएं उनको यूज कर कैसे सेवा में उनका भाग बनाना। इसलिए बहनें कभी भी कुछ कहें तो हम ना नहीं करें। बहनों ने कहा माना वो बाबा की एक श्रीमत हो जाती है, उसमें ही कल्याण समाया हुआ है, तो उसमें सदा हाँ जी का पाठ पक्का करके चलें। इस बात का हमने अच्छी तरह से अनुभव किया। एक अपना ही मुझे अनुभव याद आया, एक बार हम गोवा गए थे भट्ठी कराने के लिए। 10-12 सेंटर थे उनके, तो वहां अलग अलग जगह सब जगह भट्ठी कहीं क्लास कराते हुए लास्ट में वहां बड़े सेंटर से हम विदाई ले रहे थे। तो वहां का जो सेंटर का हाल है वो बहुत ही वंडरफुल हाल है। ऐसा मैं समझता हूं ऑल इंडिया में कहीं भी हाल नहीं होगा। हाल तो होगा लेकिन ऐसा दृश्य नहीं होगा। क्या कि हाल के पीछे, स्टेज के पीछे वहां दीवार नहीं है हाल के, और शीशा लगा हुआ है दीवार की जगह, और शीशे के पीछे ऐसे तिरछी पहाड़ी है, और उस पहाड़ी में फलों के फूलों के पेड़ बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने लगाए हुए हैं, केला अमरूद पपीता ऐसे चीकू और फूलों के पेड़। तो क्लास में बैठने वालों को बहुत अच्छा सीन देखने में आता है पहाड़ी का। तो उसमें आपने देखा होगा लाल वाले मोटे मोटे केले होते हैं ना, लंबे लंबे, वो केले जब हम विदाई ले रहे थे वहां से, तो बहन जी ने मेरे सामने आके इतना बड़ा गुच्छा केले का रख दिया, भाई जी ये मधुबन ले जाओ। अब मेरे पास 6 आइटम पहले से ही अटैची बैग सब जगह से सौगात वगैरह मिली, और मैं अकेला आने वाला ट्रेन में हूं। तो मैंने बहन जी को कहा, मैंने कहा बहन जी आपकी भावनाएं स्वीकार है मुझे, लेकिन मेरे पास 6 आइटम पहले से ही हैं,
तो आप ऐसा करो केलों को यहीं खिला देना भाई बहनों को। तो बोल ठीक है, उसने मान लिया। हम वहां से चल पड़े, लंबा रास्ता है शायद डेढ़ दो दिन लगते हैं वहां से आने में यहां तक। तो रास्ते में दूसरे दिन कोई दोपहर के समय सेंटर पड़ता था तो हमने वहां फोन कर बता दिया कि भाई हमें थोड़ा दोपहर का भोजन भिजवा देना। वो बहनजी ने भिजवाया भोजन एक भाई को लेकर। उसी समय वहां स्टेशन पर एक दूसरी ट्रेन खड़ी दूसरे प्लेटफॉर्म पर, हमारी ट्रेन आकर रुकी दूसरे प्लेटफॉर्म पर। तो कई बार सुनने में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है फोन से, तो वो हमको ढूंढ रहा है उस ट्रेन में, और हमारी ट्रेन दो मिनट रुकी और चल पड़ी। तब बहन जी की बात याद आई, अगर केले ले आते तो अभी वो खाने में काम आते हैं। इसलिए बहने कभी भी कुछ कहें तो ना नहीं करो, सदा हाँ जी का पाठ पक्का करके चलो, उसी में ही कल्याण। और फिर केले ही लेकर हमने खाने पड़े, क्योंकि भोजन तो की जगह कुछ तो खाना ही है ना, फ्रूट ही लेके खाया फिर। तो उसके बाद हमने पक्का कर लिया ये पाठ के बहने जो भी कहें कभी ना नहीं करो। उसके बाद एक बार हम पंजाब गए तो वहां एक अपने भाई बिस्कुट बनाते हैं, उनकी दुकान है। तो बहन जी बोलने लगी, भाई जी आप अगर ले जाओ तो मैं 50 किलो के बिस्कुट बनवा देती हूँ मधुबन के लिए। मैं सुन के चुप। तो फिर मुझे तुरंत वो बात याद आई, नहीं मैंने कहा ना नहीं करना, ये अनुभव किया हुआ है बाबा की श्रीमत। तो बोल आप चिंता नहीं करो, हमारे भाई ट्रेन में रख देंगे, 5-6 बॉक्स होंगे, और वहां आप फोन कर देना कोई भाई लेने के लिए आ जाएंगे, आप रोड में उतार लेंगे। मैंने कहा ठीक है जी। तो उसने वहां बनवा दिए वो बिस्कुट, हम लेके आ गए और यहाँ भाइयों को फोन कर दिया था, वो लेने आ गए, सब कुछ सहज हो गया। तो इस तरह से मैंने क्यों अनुभव सुनाए कि कई भाई बहनों के मन में ये विचार संकल्प आ जाता है, भाई ऐसे कैसे होगा, हम क्यों करें या क्या करें। नहीं, बहनों ने कहा माना वो बाबा की श्रीमत होगी, उसमें ही कल्याण है। हमको सिर्फ हाँ जी का पाठ पक्का करके चलना है, कराने वाला तो बाबा बैठा हुआ है बस। तो कभी ना नहीं करनी है तो पुरुषार्थ तो तीव्र गति का बना रहेगा। और इसके साथ साथ दूसरा अभ्यास, पहला अभ्यास बताया ना, दूसरा अभ्यास आज मुझे सारे दिन में कम से कम 50 बार अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करनी है। 5, 10, 15 मिनट के बाद 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए बिंदु बन जाओ, निराकारी बन जाओ, अशरीरी बन जाओ। तो ये नियम है कि जैसे ही हम अशरीरी बनते हैं तो इस देह और देह की दुनिया के सब प्रकार के प्रभावों से मुक्त होकर आत्मा उस सर्वशक्तिवान भगवान की छत्र छाया के नीचे आ जाती है। और जिनके ऊपर सर्वशक्तिवान भगवान की छत्र छाया हो उसका संसार में कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। बाबा आपको मौत के मुंह से भी निकाल कर वो बाहर ले आएगा। और बाबा के ये भी शब्द हैं कि बच्चे यही अभ्यास अंत में बहुत काम आएगा, पास विदानर बनाएगा, और यही तुम्हारी मनसा सेवा और सेफ्टी का साधन बनेगा। क्या? अशरीरी बनने की प्रगति। इसलिए इसमें हम अपने आप को परफेक्ट बनाएं, जब चाहें जहां चाहें संकल्प किया सेकंड में अशरीरी बन जाए, क्योंकि योग में भी अशरीरी बनना है। तो जिन्होंने बार बार अभ्यास किया हो और फिर से वही करना पड़े तो क्या होगा, सहज हो जाएगा ना। और जिन्होंने बाबा की ये भी शब्द हैं, जिन्होंने बहुत काल का अशरीरी बनने का अभ्यास किया हुआ होगा उनको अंत में शरीर छोड़ते समय कोई तकलीफ नहीं होगी। शरीर छोड़ना क्या है, आत्मा का शरीर से अलग होना ही मृत्यु है ना। अब जो सारे दिन में कितनी बार मर रहे हैं तो उनके लिए कौन सी बड़ी बात है, मरना सहज और सरल हो जाए। अगर ये अभ्यास कम किया है नहीं किया है तो अंत में बहुत जिनको तकलीफ होगी शरीर छोड़ते समय। और बाबा ने कहा यही तुम्हारी मनसा सेवा और सेफ्टी का भी साधन बनेगा अशरीरी बनने के प्रति। इसलिए इसमें हम अपने आप को परफेक्ट बनाएं, जब चाहें जहां चाहें संकल्प किया सेकंड में अशरीरी बन जाएं। तो सुनिए कैसा ये अनुभव कि कैसे अशरीरी बनने की प्रैक्टिस हमारी सेफ्टी का साधन बनती है। एक भाई का बड़ा बिजनेस था, उनके पास उग्रवादियों का लेटर आया 50 लाख रुपए फलानी डेट तक पहुंचा देना नहीं तो आपको खत्म कर दिया जाएगा। वो डेट निकल गई और डेट निकल जाने के 5 दिन बाद 5 उग्रवादी दिन के 2 बजे उसकी दुकान पर पहुंच गए, कहा कि पैसे निकालो। उसने कहा कि मेरे पास तो पैसे नहीं है। बोले नहीं है तो हमारे साथ चलिए। ठीक है जहां चलना है चलिए। तो उसको अपनी गाड़ी में बिठाया और उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और ले गए जहां उनका ठिकाना था। वहां ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया और वहां उनका एक व्यक्ति रहता था काले कपड़े पहनकर। उसका काम था या तो यदि कोई पैसे लेकर आता है नहीं तो उसको खत्म करना। तो उसने कहा कि आप पैसे लेकर आए हैं? तो कहा कि नहीं। फिर कहा कि आप जानते हैं मैं कौन हूं? तो भाई जवाब देता है हाँ मैं जानता हूं।
आप भी एक ज्योति बिंदु आत्मा हो, परमात्मा की संतान हो, आपका स्वधर्म शांति है, परम धाम के निवासी हो, ऐसे उसको बाबा का ज्ञान सुनाने लगा। तो व्यक्ति सुनकर बड़ा आश्चर्य करता है कि आज तक यहाँ जो भी आए मरने से सब घबराते हैं, कांपते हैं, लेकिन ये व्यक्ति तो इतनी अच्छी अच्छी बातें बतला रहा। तो कहा कि देखो आपकी बातें तो मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि यदि मैं आपको छोड़ देता हूं तो मेरे साथ वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे, खत्म कर देंगे, इसलिए मुझे अभी कुछ नहीं सुनना है, आप सीधे खड़े हो जाइए, हमें आपको खत्म करना है। तो खड़ा हो गया और उसको मारने के लिए पिस्तौल उसके यहां सिर में लगा दी। पिस्तौल सिर में लगाने के बाद फिर उसको पूछता है कि आपको अभी डर नहीं लग रहा है? तो भाई जवाब देता है कि देखो आप मेरे को तो मार नहीं सकते, कमाल है, पिस्तौल लगी सिर में मारने के लिए, कहता है मार नहीं सकते कैसे? बोल देखो आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, तो आत्मा तो कभी मरती नहीं है, बाकी आप इस शरीर को खत्म कर देंगे तो शरीर तो वैसे विनाशी है। तो ये जवाब सुनकर बड़ा आश्चर्य करता है, मरने का समय आया तभी वैसे जवाब दे रहा, इसको जरा भी डर नहीं है। तो बोल मुझे अभी कुछ नहीं सुनना है, आप सीधा खड़े हो जाइए, हमें आपको खत्म करना है। तो जैसे उसने ऐसे कहा तो एकदम वह शरीर ही बन के, बिंदु बन के बाबा को याद कर रहा है और बाबा से यही योग लगा रहा है कि बाबा इस आत्मा का भी कल्याण हो, इसको भी सद्बुद्धि मिले ताकि ये गलत काम करना बंद करे। तो अभी पूरा सुनो अनुभव फिर बजाना ताली। तो ऐसे बाबा से पावरफुल वाइब्रेशन से लेके शक्तियों के उस आत्मा को दे रहा है। ऐसे खड़े खड़े 3 मिनट बीते और 3 मिनट के बाद उस व्यक्ति के हाथ से पिस्तौल छूटकर नीचे गिर गए, उससे चली नहीं। क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा तो नहीं, किया तो नहीं, लेकिन वो जो बाबा से पावरफुल शक्तियों के वाइब्रेशन लेकर उस आत्मा को दे रहा था, उन पावरफुल वाइब्रेशन ने उस आत्मा के मन के विचारों को बदल दिया, और जब मन के विचार बदल गए तो कर्म इंद्रियां फिर वैसा कार्य कैसे करेंगी, इसलिए उससे पिस्तौल चली नहीं, छूट के नीचे गिर गई। और उसने कहा कभी हम आपको छोड़ देते हैं 50 लाख नहीं तो 25 लाख रुपए फलानी डेट तक जरूर पहुंचा देना, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे, ऐसा कहकर फिर से उसी गाड़ी में बिठाए उसकी दुकान के पास छोड़कर चले गए। तो इस तरह से आपको लग रहा है कि जहां मौत के मुंह में समाते जा रहे हैं बचना मुश्किल है, लेकिन यदि हम ऐसे समय पर शरीरी बन जाते, बिंदु बन जाते हैं, तो भगवान आपको मौत के मुंह से भी निकाल कर बाहर ले आएगा। इसलिए हम ये अभ्यास में अपने आप को परफेक्ट बनाएं, बार बार अभ्यास करें। तीसरा अभ्यास, स्वयं को फरिश्ता समझो और दूसरों को फरिश्ते रूप में देखकर चलो। मैं इस तन में अवतरित हुआ फरिश्ता हूं, फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, मैं आत्मा भी लाइट और मेरा शरीर भी लाइट। फरिश्ता अर्थात जिसका इस देह और देह की दुनिया से कोई रिश्ता ना हो, फरिश्ता अर्थात विश्व कल्याणकारी आत्मा। तो जो हमें बनना है, हमारे संपूर्णता की मंजिल है, पुरुषार्थ करके हमें फरिश्ता बनना है, फिर जाकर भविष्य में देवता बनेंगे। तो जो हमें बनना है उस लक्ष्य को हम बार बार अपने सामने लाएं कि ये मेरी मंजिल है, ये मेरा लक्ष्य है, वैसा एक सीन चित्र इमर्ज कर लें और फील करें कि मैं ये हूं, तो वो गुण विशेषताएं महानताएं हमारे जीवन में आती चली जाएंगी। तो ये तीनों अभ्यास रोजाना की दिनचर्या में अभी से शुरू कर दें, करके चलेंगे तो उसके बाद आप अनुभव करेंगे कि आपको वहां योग लगाना नहीं पड़ेगा, योग लगा रहेगा। और जब भी योग करने बैठेंगे सहज ही मन बुद्धि एकाग्र हो जाएगी और एक पावरफुल स्थिति का अनुभव करेंगे, करके देखिए। और तीव्र पुरुषार्थ के लिए हम अपनी दृढ़ता को कभी भी कम नहीं होने दें। जो भी आपने जीवन में लक्ष्य रखा है उसको बार बार अपने सामने लाएं कि मुझे ऐसा बनना ही है, मुझे ऐसा करना ही है। और खास अमृत वेले आंख खुलते ही कम से कम 5 बार उसको अपने अंतर मन में भर दो कि मुझे बाप समान निरंतर योगी फरिश्ता बनना ही है। क्योंकि उस समय हमारा अंतर मन शांत और खाली होता है, उस विचार को सहज ही स्वीकार कर लेगा और फिर वैसा बनना करना हमारे लिए सहज और सरल हो जाएगा। तो ऐसा ही एक और दृढ़ता, हम देखो बाबा की मुरलियों में हम सुनते हैं कई बातों का बाबा हमारे से दृढ़ प्रतिज्ञा कराते हैं, दृढ़ संकल्प कराते हैं। और आप में से जो पुराने हैं देखा होगा व्यक्त बाप दादा मुरली चलाते चलाते मुरलियों बीच में कई बातों की प्रतिज्ञा कराते हुए बाबा हाथ उठवाते थे। हम दो दो हाथ उठा के भगवान के आगे हमने प्रतिज्ञा की कि हम ऐसा करके दिखाएंगे, बन के दिखाएंगे, किया है ना। बाबा कहते थे इनका वीडियो निकालो, फोटो निकालो, हैं कहते थे ना। कितनी बार की होगी, बहुत बार की होगी। प्रतिज्ञा करने के बाद मुरली पूरी हुई, भोजन करके सो गए। दूसरे दिन शाम तक पूछो कल बाबा से क्या प्रतिज्ञा की थी, क्या होता है। कईयों को तो बात ही भूल जाती है, कईयों को याद भी रहती है तो हाँ कर लेंगे, हो जाएगा, बन जाएंगे, गेम बदल जाती है। कई कर भी पाते हैं तो बहुत थोड़े लोग ही कर पाते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्यों हमारी दृढ़ता साधारणतम बदल जाती है, क्यों हम चाहते हुए ऐसा नहीं कर पाते कई बार। उसके बाबा ने चार कारण बताए, पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत और पर संग। जब इन चारों बातों में बुद्धि जाती है तो उससे आत्मा का बहुत सारा समय और शक्तियां नष्ट हो जाती है और स्थिति साधारण हो जाती है। पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत और पर संग, चारों शब्द में पर शब्द आता है। तो बाबा ने कहा इन चारों परों को कट कर दो और एक पर लगा के रखो। कौन सा? बाबा ने कहा पर उपकारी बनो तो निरंतर उड़ते रहेंगे। तो सुनिए कैसा ही अनुभव। ये उस समय की बात है जब अपना पीस ऑफ माइंड चैनल नहीं चला था, तो एक भाई एयरपोर्ट पर सर्विस करता था। तो उस दिन बाबा को आना था, तो उसने अपने ऑफिस में छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दी, भाई आज मुझे घर पर जरूरी काम है इसलिए छुट्टी चाहिए। लेकिन एयरपोर्ट चालू होने के कारण उसको छुट्टी नहीं मिली। लेकिन उसकी दृढ़ता फिर भी कम नहीं हो रही थी कि बाबा कुछ भी करो लेकिन आज आपकी मुरली सुनने के लिए मुझे सेंटर पर जाना ही है। वो बार बार बाबा को दिल से याद कर यही कह रहा। अब उसको छुट्टी मिलने का एक ही तरीका है और वो इतना सहज काम नहीं। क्या? कि मौसम खराब हो जाए, प्लेनों का उड़ना बंद हो, एयरपोर्ट बंद हो जाए तो उसको छुट्टी मिल सकती है। अब ये काम तो इतना सहज काम नहीं है, लेकिन वो फिर भी बार बार बाबा को दिल से याद कर यही कह रहा था कुछ भी करो बाबा लेकिन मुझे आज आपकी मुरली सुनने के लिए सेंटर पर जाना ही है। तो कैसे देखो दृढ़ता सफलता का आधार बनती है। तो जैसे जैसे शाम होने को आती है तो शाम के 5 बजे के करीब वो देखता है तो धीरे धीरे मौसम खराब होने लगता है। मौसम पूरी तरह खराब हो जाता है, प्लेनों का उड़ना बंद होता है, एयरपोर्ट बंद होता है और उसको छुट्टी मिल जाती है। तो ताली बजाई लेकिन जोर से नहीं बजाई आप लोगों ने। हाँ। क्यों मैंने ये बात कही, इसके पीछे भी एक राज है। अभी तो काफी लोग तो ठीक बैठे हैं लेकिन कोई कोई वाणी से परे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब ताली बजती है तो सब में अलर्टनेस आ जाएगी, चुस्ती आ जाएगी, सुस्ती भाग जाएगी, क्लास का पूर्ण आनंद ले सकेंगे। तो इसलिए, और दूसरा ताली बजाने का फायदा क्या है कि हमारे शरीर के एक्यूप्रेशर पॉइंट है हाथ के अंदर, तो पॉइंट दबते हैं तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तो पुरुषार्थ अच्छा होता रहेगा, तो क्लास का पूर्ण आनंद ले सकेंगे। तो इस तरह से हम अपनी दृढ़ता को कभी भी कम नहीं होने दें कि मुझे ऐसा बनना ही है, मुझे ऐसा करना ही है। उस संकल्प को अमृत वेले उठते ही 5 बार अपने अंतर्मन में भर दें तो निश्चित रूप से आप ऐसे बनते चले जाएंगे। और तीव्र पुरुषार्थ के लिए बाबा ने कहा बच्चे कोई भी विघ्न परिस्थिति समस्या आए तुम दिल से याद कर मुझे बता दो, अर्पित कर दो और हल्के हो जाओ। तो हल्के होके जीवन में चलना उड़ना सहज और सरल हो जाएगा ना। किसी के सर पर 5-10 किलो वजन रख दो और उसको को दौड़ो तो मुश्किल होगा ना, और वो वजन उससे ले लो तो उसके लिए सहज हो जाएगा। तो इसी तरह से कहीं भी कोई समस्या परिस्थिति बातें विघ्न आते हैं तो बाबा ने खुद कहा हुआ है कि बच्चे कोई समस्या है मुझे दिल से याद कर बता दो, मैं सब कुछ लेने के लिए आया हूं। तो हम जब इतनी बड़ी ऑफर भगवान हमें दे रहा है तो क्यों नहीं हम उसका फायदा उठाए हैं। कहीं भी कोई बात समस्या है बाबा ये बात ऐसे ऐसे आप देख लेना, बस वहां बड़ी से बड़ी समस्या भी हल्की हो जाएगी। एक अनुभव, ज्ञान तो आप सब लोगों के पास है, मैं हर बात के पीछे मोस्टली एक अनुभव सुना रहा हूं ताकि आपको वैसा बनना करना सहज और सरल हो जाए। देखो ज्ञान होने के बाद भी कईयों के सामने जब कोई समस्या परिस्थिति आती है तो क्या होता है, कईयों की पुरुषार्थ की गाड़ी वहां खड़ी हो जाती है, प्रश्न उठता है क्या करें, कैसे करें, ये करें वो करें, क्यों सब कुछ होते हुए कुछ काम नहीं आता, ज्ञान भूल जाता है, लेकिन अनुभव याद रहता है। अनुभव अनुभवी मूर्त बनाता है, अनुभव निश्चय बुद्धि बनाता है, अनुभव अनेक विघ्न परिस्थितियों को पार करने की शक्ति देता है। इसलिए भावना का अनुभव की अथॉरिटी बनाओ। तो जो हम ज्ञान योग करते हैं उसका प्रैक्टिकल भिन्न भिन्न परिस्थितियों में जीवन में प्रयोग कर चले। तो ऐसा ही एक अनुभव जहां भगवान सर्वशक्तिवान को हम साथी बना लेते हैं, उसको अपनी सब समस्याएं अर्पित कर देते हैं, तो वहां बड़ी से बड़ी समस्या भी कैसे हल्की हो जाती है। एक बार मम्मा डे के समय की बात है, कुछ सालों पहले की बात है ये। तो मम्मा यहां से 4 घंटे की दूरी पर एक बाली छोटा सा शहर है, वहां अपना सेंटर है। वहां की बहन जी ने कुछ प्रोग्राम रखा था, तो हम मधुवन से गए थे, शांतिवन से एक बहन गई थी और एक गाड़ी वाला भाई गए थे, 3 लोग हम गए थे वहां। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, टीवी पेपरों में भी आया वो। और वो प्रोग्राम पूरा करके हम शाम को भोजन करके रात का और वापस आ रहे थे मधुवन के लिए। रात के लगभग 9 बजे थे, 70-80 की स्पीड से गाड़ी चल रही थी। अचानक गाड़ी में चलते चलते और धुआं निकलने लगा, पूरी गाड़ी 2 मिनट के अंदर धुएं से भर गई। उस भाई ने साइड को की और इंजन का कवर खोल के देखने लगा, 10 मिनट तक चेक करता रहा, कुछ पता नहीं चला। 10 मिनट के बाद फिर स्टार्ट किया, फिर धुआं निकलने लगा। फिर मैंने उसको कहा कि अभी आप इसको छोड़ दीजिए और सब बाबा को याद करो। हम बाबा को याद कर रहे थे, मैं जो बाबा को याद करते हुए कह रहा था कि बाबा अभी देखो आपके बच्चों की सेवा में हम आए हैं और रात के हैं 9 बज रहे हैं और यहाँ से हम जंगल में खड़े हैं और यहाँ से और कोई जाने का साधन नहीं है, एक बहन हमारे साथ है। अब इस गाड़ी में कहाँ पर क्या डिफेक्ट हुआ है वो आपको तो पता है, इस भाई ने तो चेक कर लिया, इसको तो कुछ पता नहीं चला। अब कैसे क्या हो सकता है वो आप देख लेना, हमको इसी गाड़ी से शांतिवन तक जाना है। ऐसे मैंने अधिकार के रूप में बाबा को दिल से याद कर कहा। 10 मिनट योग करने के बाद फिर उस भाई को कहा कभी आप गाड़ी स्टार्ट करके देखो। उसने गाड़ी स्टार्ट की, कोई धुआं नहीं, जो 10 मिनट पहले धुआं निकल रहा था 10 मिनट के बाद कोई धुआं नहीं। फिर उसको कहा कभी धीरे धीरे आप आगे बढ़ाओ, उसने गाड़ी आगे बढ़ाई, ठीक चलने लगी। फिर उसको कहा कभी बाबा के याद के गीत लगा दो, सब बाबा को याद करते चलो। और उसने मैंने कहा जो आप पहले जिस स्पीड से चला रहे थे वैसे ही आप गाड़ी चलाओ और बाबा को याद करते चलो। उसने गीत लगा दिए, सब बाबा को याद करते हुए हम आ रहे थे। तो मुझे जो अनुभव हो रहा था वो ये था उस समय कि ऊपर से बाबा की तरफ से एक बहुत बड़ा लाइट का फोकस आ रहा है और वो फोकस गाड़ी के ऊपर पड़ रहा है और उस लाइट के फोकस के फोर्स से गाड़ी दौड़ती हुई जा रही है, ऐसा मैं अनुभव कर रहा था। तो उसी गाड़ी से हम शांतिवन तक ठीक ठाक पहुंच गए। जब रात को उतर रहे थे तब उस भाई को बोला, गाड़ी जो चला रहा था, मैंने कहा भाई सुबह गैरेज में ले जाके चेक करा लेना, ठीक करा लेना गाड़ी। बोल ठीक है। तो रात को सो गए, सुबह उठे, क्लास किया, नाश्ता किया, फिर 11 बजे के करीब वो भाई फिर मिला। तो उसको पूछा, मैंने कहा भाई कुछ पता चला गाड़ी में कहाँ क्या डिफेक्ट हुआ था? बोल हाँ, मैं लेकर गया गैरेज में और मैकेनिक ने सारा चेक किया। वो बोलने लगा मैकेनिक, भाई इस गाड़ी से आप यहां तक कैसे पहुंच गए, इसके तो इंजन के सारे वायर जल गए, ये तो गाड़ी चल ही नहीं सकती है। तब पता चला कि तो बाबा ही गाड़ी चला के ला रहा था। तो इस तरह से कहीं भी कोई समस्या परिस्थिति आए, हम दिल से याद कर उसे बता दें, वो हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार है, वहां असंभव भी संभव हो जाएगा और सब कुछ सहज सरल हो जाएगा। हम तीव्र पुरुषार्थ कर आगे बढ़ते रहेंगे और तीव्र पुरुषार्थ के लिए हम 2 बातों को अंडरलाइन करके चलें। 2 बातों को अंडरलाइन करके चलें, क्या? फुल स्टॉप और फुल स्टॉक, दोनों इंग्लिश शब्द हैं। फुल स्टॉप माना हम जब चाहें जहां चाहें बीती बातों को बिंदी लगा सकें, फुल स्टॉप लगा सकें, क्योंकि बहुत भाई बहनों का बहुत सारा समय बीती बातों के चिंतन में ही चला जाता है और पुरुषार्थ ढीला हो जाता है। कई एक भाई कोई सुना रहे थे हंसी की बात, देखो 2 माताएं खड़ी होकर बात कर रही थी, एक माता के सिर पर कुछ गठरी रखी थी, कुछ सामान होगा उसमें, और एक माता ने बच्चे को गोदी में लिया हुआ था और दोनों खड़े होकर बात कर रहे, वो भाई वहां होके निकले, देख के गया, वो तो क्लास करा के फिर भोजन करके जब डेढ़ घंटे के बाद फिर वो वापस उधर ही रास्ते से निकला तो फिर भी वो बातें कर रही है खड़ी होकर। अब आप सोचो डेढ़ घंटे तक और वजन सिर पर रखा, एक की गोदी में बच्चा है छोटा और खड़ी बातें कर रही है। पूछा भाई क्या बातें कर रही माता जी? नहीं ऐसे ही कुछ बातें कर रहे थे। अब ऐसे ही बातें कर रहे थे जिनका ज्ञान और योग से कोई कनेक्शन नहीं है तो वो बात किस खाते में जाएंगी है? आप समझ सकते हैं। तो ऐसे व्यर्थ की बातों में बहुत अच्छा इंटरेस्ट, सुख मिलता है, टेम्परेली आनंद मिलता है कईयों को, लेकिन उसमें टाइम एनर्जी वेस्ट चला जाता है और आत्मा की शक्ति वेस्ट चली जाती है, स्थिति कमजोर हो जाती है। इसलिए हम व्यर्थ से मुक्त होना, फुल स्टॉप लगाना उसको, बीती बातों के चिंतन से मुक्त होना बहुत बहुत जरूरी है। किस चीज की आवश्यकता है उसके लिए? बीती बातों को बिंदी लगाने के लिए किस चीज की जरूरत है? एक तो ज्ञान और योग का बल चाहिए आत्मा में, दूसरा बीती बातों को बिंदी लगाने के लिए चाहिए ज्ञान योग का बल होगा, तो तीसरी बात आएगी कंट्रोलिंग पावर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि विचारों को कंट्रोल करना पड़ेगा ना, तो कंट्रोलिंग पावर कहां से आएगी? उसके लिए क्या करें? कंट्रोलिंग पावर के लिए हम अपने विचारों को महान बनाएं, शक्तिशाली विचार। देखो व्यर्थ के विचार चल रहे हो, उन्हें कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और विचार शक्तिशाली हो, पावरफुल हो, योग में बैठे आप, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, अब इस विचार को आप फुल स्टॉप लगाओ, जहां चाहेंगे वहां रुक जाएगा। और किसी ने आपके कोई झूठी शिकायत कर दी हो और फिर संकल्प चल रहे हो, उनको कंट्रोल करो, हो पाता है? हो पाएगा तो बहुत देरी के बाद जाके कहीं हो पाता है। तो कंट्रोलिंग पावर, जहां उसके लिए हम अपने विचारों को महान बनाएं, और विचार महान होंगे तो उन्हें हम सहज, विचार महान कैसे बनेंगे? ज्ञान के मनन चिंतन से, विचार सागर मंथन करने से विचार महान बनेंगे, और विचार महान होंगे तो उन्हें सहज कंट्रोल कर सकेंगे, जहां कंट्रोलिंग पावर है तो बीती बातों को बिंदी फुल स्टॉप लगाना सहज और सरल हो जाएगा। दूसरा फुल स्टॉक, हमारा स्टॉक सर्व खजानों से फुल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वर्तमान में भी आगे आने वाले समय को देखते हुए इस बात की बहुत बहुत आवश्यकता होगी। जब एक तरफ विनाश की तीव्र गति से शुरुआत होगी और दूसरी तरफ बाबा की प्रत्यक्षता होगी तो अनेक दुखी अशांत तड़पती भटकती आत्माएं हम सबके पास आएंगी, हमें सुख दो शांति दो नजर से निहाल करो है? आप कहते थे हमको भगवान मिला, थोड़ा हमारे को इसकी अनुभूति कराओ, कौन उनकी इच्छा पूरी कर सकेगा? जिन्होंने अपने स्टॉक में सर्व खजाने जमा किए होंगे वही दूसरों को दे सकेगा ना, आपका ही खजाना खाली है तो आप दूसरों को क्या दे पाएंगे? तो इसलिए स्टॉक को फुल करके चलना सर्व खजानों से बहुत जरूरी है। तो कैसे फुल होगा स्टॉक, और क्या क्या बाबा ने खजाने दिए हैं? समय, श्वास, संकल्प, ज्ञान, गुण, शक्तियां, तन, मन, धन, ये सब खजाने हैं ना। देखो इस तन को भी जितना बाबा की सेवा में लगाएंगे तो तन स्वस्थ बनेगा, तंदुरुस्त बनेगा, मन को जितना बाबा में लगाएंगे मन शक्तिशाली पावरफुल बनेगा, और धन को जितना बाबा की सेवा में लगाएंगे धन की कमी नहीं आएगी, धन और ही बढ़ता जाएगा। और बाकी जो भी खजाने हैं उन सबको जितना समय श्वास संकल्पों को सफल करके चलेंगे तो स्टॉक वो खजाने बढ़ते जाएंगे, स्टॉक हमारा फुल हो जाएगा। तो उनको हम दूसरों को दान दें, सेवा में लगाएं, सफल करें तो हमारा स्टॉक फुल होगा। इस पर एक अनुभव, एक माता थी बाबा के ज्ञान में चलती थी, उसके पास बहुत धन था, अथा धन, लेकिन बाबा की भंडारी में वो थोड़ा सा ही करती थी। तो माताएं फील नहीं करना, मैं अभी भी कहीं गया था तो देखो मधुबन के लिए कुछ न कुछ देते हैं, तो एक माता आई, टोली दे रहे थे हम, भाई जी ये 100 रुपए हैं इसमें से 90 मेरे को वापस कर दो, 10 यहां रख लो। तो मैंने तो कर दिया, दे दिया उसको, लेकिन हम ये देखें कि हम किसके लिए क्या कर रहे हैं और कौन करा रहा है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सब कुछ काम ऊपर से ही हो रहा है, वही करा रहा है, उसी का दिया हुआ, उसी की सेवा में हम लगाकर फ्री में ही अपना भाग्य बना रहे हैं। सच्चाई तो ये है, इसलिए उसमें कंजूसी ना करें, क्योंकि अब जो कुछ हम करेंगे वो हमारे अनेक जन्मों के लिए पद्मों की कमाई का आधार बनेगा, श्रेष्ठ भाग्य का आधार बनेगा। तो वो माता के पास बहुत धन था, लेकिन बाबा के भंडारी में थोड़ा सा ही करती थी, तो और भाई बहन उसको बोलते थे कि माताजी ये सब कुछ विनाश हो जाएगा, चोर लूट ले जाएंगे, पता चल गया तो गवर्नमेंट ले लेगी, इससे तो अच्छा क्यों ना आप बाबा की भंडारी में करके अपना भाग्य बना लो, भविष्य में उतना मिल जाएगा। लेकिन फिर वो किसी का नहीं सुनती थी, थोड़ा सा ही करती थी। तो एक दिन रात को वो सोई हुई थी, तो नींद में उसने स्वप्न देखा। तो स्वप्न में वो क्या देखती है कि वो स्वर्ग में पहुंच गई है, बहुत सुंदर सुंदर हीरे जवाहरात के महल बाग बगीचे देखकर ही बुढ़िया की दिल खुश हो गई, कितना अच्छा स्वर्ग है। तो और लोग स्वर्ग में सब अपने अपने घरों में जा रहे हैं, लेकिन इसको अपने घर का मालूम नहीं था। तो स्वर्ग के गेट पर जो व्यक्ति खड़ा था, इससे उसने पूछा, भाई मेरा घर कौन सा है स्वर्ग में, मेरे को भी तो बताओ ताकि मैं भी देखूं आप लोगों ने कैसा बनाया मेरा घर स्वर्ग में। तो उस व्यक्ति ने एक दूसरे व्यक्ति को बुलाकर कहा कि भाई जाओ ये माता जी को इनके घर तक छोड़कर आओ। तो व्यक्ति वहां से चलता है, तो वहां तो बड़े बड़े महल थे, और जैसे जैसे वो आगे चलता जाता धीरे धीरे छोटे छोटे महल आते जा रहे। बुढ़िया सोचने लगी कहां लेके जा रहा है, यहां तो और ही छोटे छोटे महल आते जा रहे, ये सब सपन में देख रही है वो। और लास्ट में जाके एक छोटी सी कुटरिया माता की बनी हुई थी, तो कहा माता जी ये आपका महल है। देखकर ही बुढ़िया बड़ी परेशान कि आप लोगों ने मेरे लिए इतना ही छोटा सा महल क्यों बनाया है। तो व्यक्ति जवाब देता है कि माता जी हम क्या करें, आपने जितना उधर से इधर भेजा उससे हम इतना ही बना पाए, समझे समझ गए ना, क्योंकि वो करती ही थोड़ा सा थी। तो ये तो देखो भगवान दाता है, किसका लेकर क्या करेगा, आज जो भी हम उसके यज्ञ में सफल कर लेंगे उतना हमें भविष्य में मिल जाएगा। तो ये सुनकर बुढ़िया की आंख खुली कि अच्छा ऐसी बात है, फिर तो मैं कल से ही अपना सब कुछ सफल करने लग जाऊंगी। वो सफल करने लगी। तो आप सोच लेना कि आपको स्वर्ग में छोटे महल से काम चलेगा या बड़ा महल चाहिए, है? इसका निर्णय आप खुद करना, और बड़ा चाहिए तो सब कुछ सफल करना होगा। लास्ट में एक स्लोगन और अनुभव सुना के मैं पूरा करता हूं। हम बहुत जगह लिखा हुआ देखा होगा, यहां भी शायद कहीं होगा एक स्लोगन अपना, कई सेंटरों पर होता है, बच्चे तुम सिर्फ मुझे याद करो, तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा। और मेरा अनुभव यह है कि हम सिर्फ उस अपनी एक जिम्मेवारी निभाएं, उसे याद करें, हमारे लिए सोचने का काम भी भगवान करता है। क्या होगा, कैसे होगा, होगा नहीं होगा, क्या करें, ये सोचने के बजाय हम अपनी एक जिम्मेवारी निभाएं, बस बाबा को याद कर दें, उसे जो भी बात समस्या है उसे बता दें, वो सब कुछ हमारे लिए करने को तैयार है। एक जगह हम भट्ठी कराने के लिए गए, दो दिन की भट्ठी थी, और फिर तीन दिन एक एक जगह अलग अलग जगह उन्हीं के कनेक्शन में एक एक दिन की भट्ठी थी तीन जगह। तो एक ही दिन की भट्ठी होने के कारण दिन में भोजन के बाद फिर से तुरंत क्लास शुरू हो जाते थे, तो तीन दिन से हमको दिन में रेस्ट नहीं मिला था, काम चल रहा था लेकिन रेस्ट की कमी हो रही थी। चौथे दिन वहां की बहन जी ने एक चौथे सेंटर पर क्लास कराने के लिए भेजा, मॉर्निंग क्लास कराने के लिए। तो जब चौथे सेंटर पर पहुंचे तो वहां की बहन जी ने जाते ही प्रोग्राम दिया कि भाई जी एक क्लास करा के नाश्ता करके 10:30-11 बजे और एक सेंटर पर क्लास कराने जाना है। अब मुझे तो वही क्लास कराना थोड़ा सा भारी लग रहा था, तो मैंने बहन जी को कुछ नहीं बोला, उनकी बात सुन ली, और मैं बाबा को याद कर कहने लगा कि बाबा अभी देखो ये शरीर रूपी गाड़ी तो रेस्ट मांग रही है, और बहन जी ने कहा कि एक क्लास करा के नाश्ता करके 10:30-11 बजे और एक सेंटर पे क्लास कराने जाना है, तो कैसे क्या हो सकता है वो आप देख लेना। मुझे तो निमित्त बन के पार्टी बजाना है, सेवा कराने वाले तो आप हो, ऐसे मैंने बाबा को याद कर बता दिया। बस भगवान जी के लिए तो एक सेकंड की बात है। तो क्लास पूरा किया, नाश्ता किया, और उसके बाद बाबा ने बहन जी की बुद्धि को टच किया, और बहन जी आके कहती है अच्छा भाई जी मेरे को ऐसा विचार आया कि अभी आप थोड़ा रेस्ट कर लो, उसके बाद जाना क्लास कराने। वाह वाह, इसका मतलब कि हमारे मन का एक एक संकल्प उसके पास पहुंच रहा है, तभी तो उसका रिटर्न मिल रहा है ना। तो सदैव याद रहे कि भगवान मुझे देख रहा है, देख तो रहा ही है। अगर ये स्मृति सदैव विमर्ज रूप में रहेगी तो अलर्टनेस रहेगी, तीव्रता बनी रहेगी। तो इस तरह से इन कुछ एक बातों को हम अपने पुरुषार्थ का आधार बना के चलें, तो एक तीव्र पुरुषार्थ करते निरंतर आगे बढ़ते उड़ते उड़ाते रहेंगे, समय पर संपूर्णता की मंजिल पर पहुंच जाएंगे। यही हमारी आप सभी के प्रति शुभ भावना, शुभकामना है। ओम शांति।
लंबी मंजिल तुम्हें तेज कदम चलना।